Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And listeners, today being Sunday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. To navigate you through today's show, along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
Dhanyawad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. Sawal poochne ke liye aap in numbron par phone kar sakte hain 2331-4444, 2342-1050 aur 2331-0464. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
यूरोपियन लीडर्स अपोज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स ग्रीनलैंड टेकओवर प्लान्स एंड टैरिफ थ्रेट्स. यूरोपियन यूनियन टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग टुडे. ईयू एंड साउथ अमेरिकन ब्लॉक मर्कोसुर साइन लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्रिएटिंग वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड जोन्स. एंड ग्लोबल स्पॉट सिल्वर प्राइस क्लॉक्स डबल डिजिट राइज लास्ट वीक.
यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की योजना और शुल्क लगाने की धमकी का विरोध किया. आज यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक. यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अमेरिकी देशों के संगठन मर्कोसुआ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया. ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार क्षेत्रों में से एक होगा और पिछले हफ्ते स्पॉट चांदी की वैश्विक कीमतों में लगभग 13% का उछाल.
And listeners, before we go any further in the program, may we remind you, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Aur khabrein shuru kare Sarabjeet, aaj puri duniya ki nazrein European Union pe hain.
Ji, bilkul. In fact, that's the big story today in our program too. The European Union, EU, is set to hold an emergency meeting in Brussels today after US President Donald Trump announced tariffs on 8 European countries over their opposition to a potential American acquisition of Greenland. Ambassadors from all 27 EU member states will deliberate on the issue. Trump earlier announced in a social media post that 10% tariff would take effect on 1st of next month for Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the UK, the Netherlands and Finland. He added that the tariffs would rise to 25% on 1st of June and would remain in effect until Greenland is sold to the US. Trump had earlier stressed the strategic importance of Greenland for US security and its rich mineral resources. UK Prime Minister Keir Starmer has called the move completely wrong, while French President Emmanuel Macron described it as unacceptable. European Commission President Ursula von der Leyen has said tariffs would undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. Meanwhile, EU has also put a pause on the ratification process of the EU-US trade deal announced back in July last year.
और अब कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं. जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ सर, नमस्कार. ये पूछता था कि जैसे हमको एक इंडेक्स फंड लेना है, तो मैंने तीन फंड देखा. एक तो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150, और एक दो जगह देखा निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इस तीनों में कौन सा ठीक लग रहा है? हमको तो मिड कैप 150 ठीक लग रहा है, ये एक मेरा प्रश्न है। तीनों में से हम एक लेंगे लंबे समय के लिए। और दूसरा सर, बड़ौदा बीएनपी का म्यूचुअल फंड हमारे ऑफिस के पास में इसका ऑफिस है, तो मैं इसके यहाँ से फॉर्म लाया, लेकिन इसका एयूएम देख रहा हूँ कि बहुत कम है, कोई 48 करोड़, कोई 125 करोड़, तो क्या कुछ कम से कुछ फर्क पड़ता है? ये दो प्रश्न है
जितेंद्र जी। जो आपने पहले तीन फंड बोले, एक निफ्टी मिड कैप 150 बोले, एक निफ्टी 50 बोले, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 बोला, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन तीनों फंड्स में डिफरेंस क्या है, तीनों फंड डिफरेंट कैसे। देखिए, जो निफ्टी 50 है वो जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाता है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो उसके अगली 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, और जो मिड कैप 50 है वो एक तरीके से आपकी जो कंपनी नंबर 101 से लेके अगली 150 कंपनियां हैं, यानी कि 101 से लेके 250 नंबर तक की कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाएगा। तो ये जो तीनों ही इंडेक्स फंड्स है, तीनों इंडेक्स फंड्स है, लेकिन इन तीनों का जो नेचर है, जिस तरीके की कंपनियों में ये पैसा लगाते हैं, वो एकदम अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर अभी आप एकदम शुरुआत ही कर रहे हैं, आपने इससे पहले ज़्यादा अगर इक्विटी में निवेश नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो आप निफ्टी 50 से शुरुआत कीजिए। निफ्टी 50 सबसे बड़ी 50 कंपनियों में रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत उसमें और एक्सपोजर डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी डाल सकते हैं। बाकी आप धीरे शुरुआत कीजिए, बड़ी कंपनियों से चलिए, निफ्टी 50 से शुरुआत कीजिए। और वहीं पे आपका एक जो दूसरा सवाल था कि एक बड़ौदा का फंड है जिसमें कि एयूएम काफ़ी कम है। देखिए, जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें, और जो लार्ज कैप इक्विटी के होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारा निफ्टी 50 हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा एयूएम से हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं होती। एयूएम की टेंशन वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे कि हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। बट उसके अलावा देखिए, इंडेक्स फंड जब भी आप चुनाव करेंगे तो ज़रूरी होता है कि आप देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, वो फंड का खर्चा कितना है, क्योंकि एक इंडेक्स फंड का काम ये है कि जो इंडेक्स में जिस प्रपोर्शन में कंपनीज है, जिस तरीके से वो एक इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूटेड है, हम उसको एकदम ही फंड मैनेजर्स को रेप्लिकेट करता है। यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से, कुछ अपने डिसीजन से कुछ ज़्यादा चुनाव नहीं करता है। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप देखिए कि किस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड का, और जिसका ट्रैकिंग एरर, यानी कि जो उसके रिटर्न्स और जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं उन दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम हो, वैसे फंड का चुनाव कीजिए।
वैसे आकार, जब इन्होंने एयूएम के बारे में पूछा, ये कुछ फंड्स के बारे में बता रहे थे, इनको शंका थी कि उसका एयूएम कम है और आमतौर पर हम अभी तक जितनी चर्चा करते आए हैं मार्केट मंत्र में हमेशा, तो उसमें कई बार हम बोल लोगों को बोलते हैं कि नहीं, इसका एयूएम बहुत ज्यादा हो गया है, अब जरा इससे दूरी बना लीजिए। तो ये क्या करना क्या चाहिए?
देखिए, एयूएम की टेंशन बेसिकली वहां पे आती है जहां पे स्मॉल कैप फंड है। अगर आप एक
ये तो अभी आपने बताया जी
तो
वो ज्यादा होने पर शंका होती, कम के लिए तो कोई डरने की बात
कम के लिए कोई डरने की बात नहीं है
जी।
Our next caller has joined in from Mumbai, Murtuza. Murtuza, अपना सवाल पूछे।
मैंने मेरा फर्स्ट सवाल ये कि गोल्ड बॉन्ड जो मैं लिया हूँ उसको कितने साल तक पहले नहीं बेच सकता हूँ?
कौन सा गोल्ड बॉन्ड?
मेरे ख्याल से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। इन्होंने शायद पहले का गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा, एसजीबी का, जो भारत सरकार द्वारा निकाला गया था। देखिए, जो एक एसजीबी होता है उसका एक जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 साल का होता है, 8 साल में वो पूरा मच्योर होता है। उसको खरीदने के 5 साल के बाद आरबीआई एक विंडो निकालता है जब आप उसको आरबीआई के थ्रू ही प्री मच्योरली क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसको बीच में चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। जरूरी नहीं कि जब आप बेचना चाहे तो वहां पे कोई आपको खरीदार मिले
जी।
एंड आकार, लाइक आवर फर्स्ट कॉलर रिटरेटेड दैट ही इंटेंड्स टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इज द यू नो द लॉन्गेविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अ डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन वी थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड? वी लाइक टू हैव योर व्यू ऑन दिस।
या डेफिनेटली, इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वन शुड आस्क द होराइजन, बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प्स यू डिसाइड ऑन द असेट एलोकेशन एंड व्हिच टाइप ऑफ असेट यू वांट टू इन्वेस्ट इन, वेदर टू गो विद इक्विटी, वेदर टू गो विद फिक्स्ड इनकम, और वेदर टू गो विद अ you know mix of both. So ideally, if you are going for a long horizon, that I would say more than 5 years, like 7-8 8 years, then it's better to have as much equity as possible.
جی اور ہم شروتاؤں کو یاد دلا دیں کہ آج ہم میوچل فنڈ سے جڑے آپ کے سوالوں کو کارکرم میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میوچل فنڈ ایکسپرٹ آکار رستوگی ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں 2331-4444 2342-1050 اور 2331-0464 پر. اور یورپین یونین پر ہی ہے اور اگلی خبر بھی یورپیہ سنگھ اور دکشن امریکی ویاپار سموہ مرکوسوا نے بہ پرتیکشت مکت ویاپار سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں. پراگوے کی راجدھانی ایسونسیون میں اس سمجھوتے سے دنیا کے سب سے بڑے ویاپار کھیتروں میں سے ایک کا گٹھن ہوگا. اس سمجھوتے کے انترگت یوروپیہ سنگھ اور مرکوسوا دیشوں ارجنٹینا، برازیل، پراگوے اور اروگوے کے بیچ 90% سے ادھک شلک میں کٹوتی کی جائے گی. حالانکہ کچھ کٹوتیاں 10 سے 15 سالوں میں چرنبد طریقے سے لاگو کی جائیں گی. یوروپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ارسولا وار ڈی لین نے اسے بھو راجنیتک سفلتا بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں کھیتروں کے بیچ نریات، وکاس اور روزگار کو بڑھاوا ملے گا. یہ سمجھوتا یوروپیہ سنگھ کے سبھی 27 سدسیہ دیشوں پر لاگو ہوگا. حالانکہ آسٹریا، فرانس، ہنگری، آئرلینڈ اور پولینڈ نے اس کا ویرودھ کیا ہے. اب اس سمجھوتے کو یوروپیہ سنسد سے منظوری ملنے اور مرکوسوا دیشوں سے انمودت کرنے کی آوشیکتا ہے.
And Subodha, I see meanwhile two callers have lined up from Delhi. Sanjeev ji, swagat hai aapka. Apna sawal poochhe.
Good evening. Actually, my question is, actually, like mutual funds ki NAV daily basis pe decide hoti hai, which is decided by the mutual fund, this thing, PMS, whatever you call, mutual fund ka jo hota hai, registrar. Abhi kya ho raha hai ki kuch market to badhta hai, but usse mutual fund ka jo NAV hai, wo ghat jata hai. Ya...
جو ایک میوچل فنڈ کا این اے وی ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ اس کا جو پورا پورٹ فولیو ہے اس کے پورٹ فولیو میں جو اسٹاکس ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے. دیکھیے جو این اے وی ڈیسائڈ ہوتا ہے وہ ڈے اینڈ پہ اس پورٹ فولیو کی جو ایک مارکیٹ ویلیو ہے ساری وہ مارکیٹ ویلیو ٹوٹل کی جاتی ہے اور اس میں سے جو ایکسپینسز ہے وہ مائنس کر کے یونٹ سے ڈیوائڈ کر کے ایک این ای وی ڈیسائڈ ہوتی ہے. تو بہت بار جیسے کہ آپ نے کہا کہ مارکیٹ تو اوپر بڑھا تو یہاں پہ میں مانتا ہوں آپ نے جیسے مان لیجیے سینسیکس دیکھا, سینسیکس خالی اوپر کی ایک 30 کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس دن لارج کیپ اوپر گیا ہو اور جس فنڈ میں آپ کا نویش ہے وہاں پہ لارج کیپ کا ایلوکیشن اتنا زیادہ نہ ہو, ان کمپنیز کا ایلوکیشن اتنا زیادہ نہ ہو جو سینسیکس میں ہو, دوسری کمپنیز کا ایلوکیشن ہو سکتا ہے وہ مڈ کیپ ہو سکتا ہے وہ اسمال کیپ ہو, یا پھر وہ پرٹیکولر کمپنیز نے اس دن پہ اچھا نہیں کیا تو ان کا جو پورٹ فولیو ویلو ہے اس پرٹیکولر فنڈ کا وہ نیچے جائے گا کیونکہ وہ ان کمپنیز سے ریلیٹڈ ہے, تو وہاں پہ آپ کا این ای وی تھوڑا سا نیچے آ جائے گا.
جی اگلے کالر ہیں دلی سے ونود, سواگت ہے آپ کا, سوال پوچھیں.
سر میری طرف سے پوری ٹیم کو نمسکار.
نمسکار,
میرا ایکسپرٹ سے سوال ہے کہ میں 2017 سے ایس بی آئی اسمال کیپ میں انویسٹڈ ہوں اور میں اس کی پرفارمنس دیکھا ہوں, بار بار وہ نیچے جا رہی ہے, اب یہ 2 star ریٹنگ ہو گئی ہے, تو میں اس میں کیا کروں اور اگر سوئچ کرنا ہے تو کچھ فنڈ کا نام بتائیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن کے لیے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ کا ایکسپوزر ہونا چاہیے, لیکن وہاں ٹکٹ سائز اتنا بڑا ہے نا, وہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے میرے لیے. تو دوسرا کیا راستہ ہے کہ ریئلٹی اسٹیٹ میں میں انٹری کر سکوں, اور دوسرا یہ ہے کہ میوچل فنڈ کے میں رہتے ہوئے کیا ریئل اسٹیٹ کی جو انفلیشن اس کو بیٹ کر کیا جائے. تھینک یو.
ونود جی جو آپ کا پہلا سوال تھا ایس بی ایس اسمال کیپ کو لے کر کے, آپ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں, ایس بی ایس اسمال کیپ کا پردرشن پچھلے کچھ سمے سے اچھا نہیں رہ رہا ہے اور وہاں پہ جو نویشک ہے ان کو تھوڑا سا مطلب ایک ہلکی سی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے, ایک نراشا ہو رہی ہے. تو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک ایس بی ایس اسمال کیپ فنڈ ہے آپ چاہے تو اس میں ابھی اپنے کنٹینیوئنگ جو ایس آئی پیز ہیں ان کو بند کر سکتے ہیں, آپ ان میں اور پیسہ نہ لگائے, بٹ اس کے جو فنڈ مینیجر ہے ان کا ریکارڈ ایک کافی اچھا ہے, کافی پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اور اچھا فنڈ ہے ان کا فنڈ مینیجر بھی, تو جو پیسہ اس میں آلریڈی انویسٹیڈ ہے آپ چاہے تو اس کو وہاں پہ ابھی بنائے رکھ سکتے ہیں. आगे का पैसा किसी और इंक्रीमेंटल मनी किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में निवेश करिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा तब भी मतलब आप थोड़े समय इसको और दे सकते हैं 4-5 महीने का, अगर आपको तब भी बहुत ज्यादा लगता है तो आप यहां से बेशक अपना पैसा दूसरे फंड में मूव कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा सवाल आपका था रियल एस्टेट को लेकर, देखिए रियल एस्टेट में आजकल एक स्मॉल टिकट साइज में आप रीट्स के थ्रू निवेश कर सकते हैं, बट जहां पर की बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की, वहां पे फाइनेंशियल असेट्स में ही आप डाइवर्सिफिकेशन करिए। आप इक्विटी में करिए, आप फिक्स्ड इनकम में करिए, और आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पोर्शन है गोल्ड का भी डाल सकते हैं। रियल एस्टेट होना ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बहुत बल्कि रियल एस्टेट में अगर आप फिजिकली निवेश करने की चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल असेट्स के मुकाबले उसके फेवर में नहीं है। वहाँ पे देखना पड़ता है, वहाँ पे आपकी जो एक रेंटल यील्ड होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। वहाँ पे फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर आप टेनेंट रख रहे हैं तो आपको इस बात की श्योरिटी लेनी पड़ती है कि आपको हर वक्त एक अच्छा टेनेंट मिल जाए। तो रियल एस्टेट में फिजिकली निवेश करने के अपने कहीं नुकसान है। बाकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो बनाइए, इक्विटी रखिए, फिक्स इनकम रखिए, थोड़ा सा गोल्ड रख सकते हैं।
जी, जैसा कि हमेशा एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं, घर तभी खरीदिए जब आपको खुद रहना हो।
जी बिल्कुल।
अगले कॉलर हैं दिल्ली से योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्कार आप सभी को। मेरे जो सवाल है वो ये है कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में सवाल है, ये इतना बेहतरीन फंड कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है कि ये फ्लेक्सी कैप को और HDFC लार्ज एंड मिड कैप को और काफी सारे फंड को अपनी कैटेगरी में लगातार साल दर साल बीट करता हुआ आ रहा है। क्या इसमें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये डायनेमिक कॉल लेते हैं, तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और जब मार्केट ऊपर जा रही है तो एक तरीके से उस हिसाब से भी मतलब एक बेहतरीन फंड साबित हो रहा है लगातार?
जी बिल्कुल। देखिए, जो एक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है ये इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में डायनेमिकली मूव होता है और ये एक असेट एलोकेशन मेंटेन करता है। बाकी आपने ठीक कहा, ये फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बट मेरा ये मानना है कि देखिए यही चीज़ है जिसके लिए बेसिकली हम फंड मैनेजर्स को एक्सपेंस रेशियो देते हैं एंड जिसका उनको खर्च मिलता है, और ये एक क्वांटिटेटिव मॉडल पे बेस्ड है जिसपे कि वो अपनी असेट एलोकेशन रीबैलेंस करते हैं एंड उस फंड का परफॉर्मेंस आ रहा है।
इंटरेस्टिंगली आवर नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। नवनीत जी अपना सवाल पूछें।
I have a very general question. First of all, good evening to everyone.
Good evening.
My first question of the year. I have a very general question about, let's say there's a flexi fund or a multi-asset fund which have grown very big. Is it advisable to go for a big ticket flexi fund or let's say a new flexi fund which is coming up? What should be the choice? Thank you.
So between a new FlexiCap fund that is coming up and in comparison to a FlexiCap fund which has been there, which has a huge AUM, I would definitely prefer an old fund, provided its track record, its returns are good. See, whenever we invest in a new fund, we do not have the idea of its track record, how you know it will perform, how it has performed in the past. But whenever we invest in an old fund, we can look back in the history, how it has, how the fund has performed across different phases of the market. And when it comes to the size of the AUM, as I was mentioning, size of the AUM is a problem when it comes to a small cap fund or, small companies. A flexi cap fund or a multi-asset fund, I would say basically the flexi cap fund is mostly large cap based and one should not be worried about the AUM in that case.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज एक्चुअली सपोज मैं मतलब मल्टीपल फ्लेक्सी कैप और मल्टीपल मल्टी एसेट कैप है तो उनमें ओवरलैप कितना होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली दो अलग अलग मान लीजिए फंड हाउसेस का मल्टी कैप ले रहे हैं तो वो मतलब उसमें बट वो स्क्रिप्ट उनका जो भी है वो दोनों में कॉमन या ओवरलैप जो है, इज देयर इन थंब रूल एंड हाउ डू आइडेंटिफाई, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है, बिकॉज अभी वी नो पराग पारिक एक्चुअली वेल नोन वन एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, सो अभी उनका एक्चुअली नया एक फंड आ रहा है एक्चुअली लार्ज कैप का जो है, दो आई नो लाइक आपका सजेशन हमेशा रहता है कि भी एनएफओ में मत जाइए, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर ही जाइए, बट जस्ट आई वांट टू हैव एन योर ओपिनियन ऑन दैट.
सी फर्स्टली आई वुड से कि जो एक ओवरलैप की चीज है, ओवरलैप जितना कम हो उतना अच्छा है. एंड एक यही रीज़न है हम लोग कहते हैं कि जब आप एक सेम कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप मत रखिए या बहुत सारे मल्टी कैप मत रखिए. एक तरीका ये है कि आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, हर महीने इनकी फैक्ट शीट आती है, उसमें टॉप होल्डिंग्स आती है. आप वहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दो फंड्स आपने चुने हैं उनमें बहुत ज्यादा ओवरलैप तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही सेम पोर्टफोलियो है. दूसरा, आजकल ऑनलाइन काफी कैलकुलेटर्स है, वेबसाइट्स है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं, वहां पे आप ये चीज चेक कर सकते हैं. सेकेंडली, जो आपका है पराग पारेख लार्ज कैप फंड का, देखिए अनडाउटेडली जो फंड हाउस है अच्छा है, उसमें एक लेगेसी है, एक जो आपका जो रिटर्न्स का है, जो उनके CIO है, उनका एक बिल्ड इन ट्रैक रिकॉर्ड है, सब चीज़ें अच्छी है. बट मेरा जो एक सुझाव रहेगा कि आप केवल इसलिए निवेश ना करिए कि वो फंड हाउस एक बहुत अच्छा फंड हाउस एक नया फंड लॉन्च कर रहा है, एक लार्ज कैप फंड लॉन्च कर रहा है. क्या आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त एक्चुअली में एक नए लार्ज कैप फंड की जरूरत है? आप उस चीज को देखिए और उससे चुनाव कीजिए.
जी, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते में, इस गुजरे हुए हफ्ते में सोना कितना सोना रहा. सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों में पिछले हफ्ते भी तेजी का रुख बना रहा. स्पॉट चांदी में 12.7% की बढ़ोतरी हुई और ये $90.12 प्रति औंस पर पहुंच गई. सोने में भी चमक रही और ये 1.9% बढ़कर $4,596 प्रति औंस पर पहुंच गया. दुनिया भर में जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और राजनीतिक सामरिक गतिविधियों की वजह से कीमती धातुओं में तेजी बनी हुई है. देश के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च अनुबंध की चांदी में पिछले हफ्ते 13.9% की बढ़त देखी गई और ये 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इस बीच फरवरी अनुबंध के सोने में पिछले हफ्ते 2.7% की वृद्धि हुई और पिछले हफ्ते यह 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.
और बिहार से टिंकू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. टिंकू जी, अपना सवाल पूछें. I believe you have not being able to connect with this listener. Let's move on to the next caller. Keshav ji, Delhi se, apna sawal poochhein.
Hello, namaskar sir.
Ji, namaskar.
Madam, namaskar. मैंने ये पूछना है कि एक्सपर्ट से कि हमने एक न्यूज अपना कार्यक्रम देखा था, एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बोला था कि आप अगर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 ऐसे 50-50 और एक्विटी भी की जानकारी पहले लीजिए, फिर आप इसके अंदर अपना पैसा लगाएं. ये क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे?
केशव जी, देखिए जो निफ्टी 50 है वो एक इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जो कि जो हमारे मार्केट कैप के हिसाब से जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है. तो बेसिकली जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे, आपका किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगेगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा एक प्रपोर्शन में उन 50 बड़ी कंपनीज में लग जाएगा. तो ये एक ओवरऑल इंडेक्स होता है जो कि सबसे बड़ी 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रॉडली हमारी जो मार्केट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से एक सेंसेक्स भी होता है, आपने सुना होगा. सेंसेक्स सबसे बड़ी जो 30 कंपनीज है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है. तो ये जानकारी शुरुआत में रखना बहुत मतलब सही बात है. आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें मतलब पैसा होता है. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इक्विटी है ये शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा. बाकी आप आगे बढ़िए, एक इंडेक्स फंड में एक बहुत छोटे से अमाउंट से निवेश करना शुरू कीजिए और कुछ महीने उसमें SIP के जरिए पैसे लगाइए और उसको थोड़ा सा ट्रैक कीजिए. उसको देखिए कि कैसे NAV आती है मार्केट के साथ में, वो NAV कैसे चेंज हो रही है, उसके मंथली डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, क्या फैक्टशीट्स होती है, उससे आपको एक और जानकारी मिलेगी. और अगर आप चाहें तो कुछ महीनों के बाद आप उस फंड से एक बहुत ही छोटा सा रिडेम्पशन करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक पूरा साइकिल का आइडिया लग जाए कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, किस तरीके से इक्विटीज काम करती है, किस तरीके से वो फ्लक्चुएट हो सकती है शॉर्ट टर्म में, और फिर जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप एक बड़े अमाउंट का निवेश कर सकते हैं।
जी अगले कॉलर है दिल्ली से शोभित, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
हाय आई एम शोभित, थैंक यू मार्केट मंत्रा, यू आर मेकिंग आवर मनी मूव। सो माय क्वेश्चन, आई हैव टू क्वेश्चंस, वन इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल फंड। आई एम होल्डिंग couple of mutual funds and the one of them I am concerned about is UTI Next 50. I am holding for more than 10 years now and the performance is now I think quite tepid. And secondly, I want to know if you can tell me, I have inherited some shares from my parents and now I want to redeem bit of them, so on what way I'll be taxed, like it's a long term capital gain, but how it will be on the grandfatherly date or something like that. Thank you.
Yashobhiji, your first question related to UTI Nifty Next 50 index fund, I would say it's an index funds replicating an index. And I mean, I don't see a very huge problem here. So you can very well, you know, continue your investment with it. Regarding your second question on the tax treatment of the inherited shares, see, normally, you know, I mean, the date of purchase, the original date of purchase and the original cost is considered as the cost and date for calculating capital gains. And yes, as you rightly mentioned, you know, 31st, I mean, January 2018, there will be grandfathering effect.
जी अगली खबर पे चलें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई का इस महीने अब तक बिकवाली का जोर रहा है और उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 22,530 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस अवधि में भारतीय ऋण बाजार से भी 5,143 करोड़ रुपए निकाले।
And let's see how the markets are expected to look up next week after ending the week largely unchanged. Domestic markets are likely to focus on December quarter earnings season, domestic core industries data, foreign fund flows, economic data from the United States, and trade developments for Q's next week. In the week ahead, corporate earnings will be one of the biggest drivers for the market. As the earnings season enters its second week, several large and mid-cap companies from different sectors are scheduled to announce their third quarter results. Investors will also closely track the core industries data slated for release on 20th of this month. On the global front, US core PCE inflation and GDP figures along with economic data from China will remain on the radar. The Bank of Japan's two-day policy decision meeting is scheduled to begin on 22nd of January. Markets are also expected to track discussions at the World Economic Forum Summit, which begins in Davos tomorrow and runs until 23rd of January.
बहुत कुछ है अगले हफ्ते देखने के लिए सरबजीत, अभी पूरी दुनिया की निगाहें पूरी दुनिया पर हैं कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। खैर आकार, हम अगर बात करें आज जो हम बार बार सुन रहे थे स्मॉल कैप के बारे में, जैसे एक हमारे श्रोता 2018 से होल्ड करके उन्होंने रखा है, तो ये अगर हम साइकिल की बात करें, हम बोलते हैं एक पूरा साइकिल बाजार का, चलो आप 5 साल मान लेते हैं, कुछ करते हैं, क्या स्मॉल कैप में भी 5 साल का साइकिल मान के चले या कुछ ज्यादा मानना चाहिए हमें?
देखिए स्मॉल कैप में जब भी निवेश करते हैं जो एक होराइजन है कम से कम 7 साल का रखना चाहिए तो बेहतर रहता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंड ये भी करता है कि जो एक पर्टिकुलर फंड है, हर फंड के एक अप एंड डाउन फेजेस आते हैं, तो कई दफा ऐसा भी होता है कि उस फंड का डाउन फेज चल रहा हो।
जी आकार, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। European leaders oppose US President Donald Trump's Greenland takeover plans and tariff threats. European Union to hold emergency meeting today. EU and South American bloc Mercosur sign landmark free trade agreement, creating one of world's largest trade zones. And global spot silver price clocks double-digit rise last week. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. Market Mantra.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Oh, oh, oh.